समाजीकरण के प्रमुख साधन। समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न साधन हैं, अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया यूं ही नहीं चलती रहती, बल्कि विभिन्न साधनों या संस्थाओं के माध्यम से चलती है। इन साधनों में कुछ तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके बिना व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव ही नहीं। संभवतः इसीलिए समाजीकरण के एक साधन परिवार के बारे में किम्बाल यंग ने लिखा है, समाज के अंतर्गत समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों में परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार के अंतर्गत माता पिता ही साधारण सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। समाजीकरण में परिवार के बाद अन्य अभिकरणों में पड़ोस, सगे संबंधी, प्राथमिक समूहों के सदस्य तथा बाद में द्वितीयक समूहों की सदस्यता आती है। इस प्रकार यह पता चलता है कि समाजीकरण के सभी साधनों में परिवार सबसे महत्वपूर्ण साधन है तथा बाद में अन्य साधन आते हैं। समाजीकरण के साधनों अथवा संस्थाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पहला प्राथमिक साधन, दूसरा द्वितीयक साधन। समाजीकरण के प्राथमिक साधनों के अंतर्गत प्राथमिक समूह की सदस्यता वाले समूह आते हैं। प्राथमिक साधनों के अंतर्गत निम्नलिखित सामाजिक साधनों को शामिल किया जा सकता है, पहला परिवार, दूसरा मित्र मंडली या किरा समूह, तीसरा पड़ोस, चौथा नातेदारी समूह, पांचवा विवाह। समाजीकरण के द्वितीयक साधनों के अंतर्गत निम्नलिखित साधनों का शामिल किया जा सकता है, पहला वर्ग, दूसरा जाति, तीसरा राष्ट्रीयता, चौथा राष्ट्र, पांचवा राजनीतिक दल, छठवां धार्मिक समूह, सातवां भाषा समूह, आठवां व्यवसायिक समूह तथा नौवां अन्य समूह। समाजीकरण के प्राथमिक साधनों के अंतर्गत पहला साधन परिवार है। इसका महत्व व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक है। अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि जो बच्चे जन्म के समय किन्हीं कारणों से परिवार से अलग हो गए, उनमें बादों में लाख प्रयत्न करने पर भी मानवोचित गुणों का विकास नहीं हो सका। इस बात से पता चलता है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की कितनी अहम भूमिका है। जन्म के समय से लेकर प्रथम 3 वर्ष तक की अवधि बच्चों में मानवोचित गुणों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में बच्चे का संपर्क परिवार से ही रहता है। समाजीकरण में परिवार की महत्ता को दर्शाते हुए H.M. जॉनसन ने लिखा है, परिवार विशेष रूप से इस प्रकार संगठित रहता है जिसमें समाजीकरण संभव हो पाता है। दरअसल परिवार प्रारंभिक अवस्था में जो बच्चा सीखता है उसकी अमिट छाप उसके जीवन पर पड़ती है। समाजीकरण के प्रथम चरण की महत्ता बताते हुए किम्बाल यंग ने भी ए हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी में कहा है, इस संबंध में साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि प्रारंभिक समाजीकरण ही मौलिक एवं मूलभूत होता है, अपेक्षाकृत उन सभी चीज़ों के जो बाद में सीखी जाती है। यंग के इन विचारों से पता चलता है कि आरंभिक समाजीकरण का बहुत महत्व है जो परिवार में ही संभव हो पाता है। इस प्रकार परिवार समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह बिल्कुल असहाय होता है, ऐसे में माँ उसे दूध पिलाती है एवं उसके सभी नित्य क्रिया कर्मों से निर्वित कराती है तथा उसका संरक्षण करते हुए लालन पोषण करती है। माता के अलावा पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य भी बच्चे की देखभाल करते हैं। इससे बच्चे के मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है और यही सुरक्षा का भाव आगे चलकर उसे मानसिक रूप से सबल बनाता है तथा उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध होता है। जन्म के बाद बच्चा माँ की गोद एवं पिता के संरक्षण में बहुत कुछ सीखता है, जिससे उसका समाजीकरण होता है। माँ का प्यार और देखरेख बच्चे के विकास की नींव होती है। परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत माँ का प्रभाव बच्चे पर सबसे अधिक पड़ता है। इस संबंध में किम्बाल यंग ने भी लिखा है कि परिवार के अंतर्गत मौलिक क्रियात्मक साचा माँ और बच्चे का होता है। माता के बाद पिता का प्रभाव सबसे अधिक बच्चे पर पड़ता है। पिता परिवार का मुखिया होता है, बच्चा भी उनकी देखा देखी प्रत्येक कार्य में अपने पिता की भूमिका को अपनाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे भी आगे चलकर इसी प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना होगा। अनुशासित रहना तथा पारिवारिक एवं सामाजिक परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना बच्चा अपने पिता से सीखता है। परिवार में बच्चे का आपसी प्रभाव भी एक दूसरे पर पड़ता है। परिवार में बड़े भाई बहन जिस प्रकार का कार्य करते हैं, उसका प्रभाव छोटे भाई बहनों पर पड़ता है। अर्थात परिवार में बच्चे भी अपने आपसी व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं। पति पत्नी के संबंध का अच्छा होना भी बच्चे के समाजीकरण के लिए आवश्यक है। अगर परिवार में पति पत्नी के संबंधों में कटुता रहती है तो उसका असर भी बच्चों पर पड़ता है। अगर पत्नी का संबंध अच्छा है तथा उनमें आपसी प्रेम है और समझदारी है तो बच्चों पर भी उसका अनुकूल असर पड़ता है और वे भी आगे चलकर समझदार बनते हैं। परिवार में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। प्रथम पाठ तो वह अपनी माँ की गोद में ही पढ़ता है। थोड़ा बड़ा होने पर जब वह माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हंसता खेलता है तो इसी क्रम में वह बोलने का प्रयास करता है और इस प्रकार उसमें भाषा का विकास होता है। बच्चा अनेक खिलौनों के साथ खेलता है। वह खेलते समय खिलौने से उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा कि माता पिता उसके साथ करते हैं। इससे बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। परिवार में ही बच्चा उठने बैठने का तरीका, नहाने का तरीका, सोच का तरीका, खाने पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, बड़ों के साथ व्यवहार करने का तरीका तथा व्यवहार के अन्य तरीकों से परिचित होता है और उसे अपनाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के आचारों और व्यवहारों का उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो आगे चलकर उसके जीवन में पथ प्रदर्शक का काम करता है। परिवार में ही बच्चा दया, धर्म, क्षमा, आज्ञाकारिता, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, मूल्य तथा आदर्श आदि से परिचित होता है, जो उसमें अनेक मनोचित गुणों का विकास करने में सहायक सिद्ध होता है। परिवार ही बच्चे को आधारभूत शिक्षा प्रदान करता है। परिवार की नागरिकता की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। वस्तुतः परिवार विभिन्न प्रकारों से बच्चे को नागरिकता का पाठ पढ़ाता है तथा उसके समाजीकरण के कार्य का करता है। उपयुक्त वर्णनों से पता चलता है कि व्यक्ति के समाजीकरण में परिवार की अहम भूमिका है। सर्वप्रथम व्यक्ति समाजीकरण का पाठ परिवार में ही पढ़ता है। इस संबंध में H.M. जॉनसन ने ए सोशियोलॉजिकल सिस्टमेटिकल इंट्रोडक्शन में लिखा है, परिवार विशेष रूप से इस प्रकार संगठित रहता है ताकि समाजीकरण संभव हो सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समाजीकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी अमिट छाप व्यक्ति के जीवन पर पड़ती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में दूसरा साधन मित्र मंडली या क्रीड़ा समूह है। परिवार के बाद बच्चा मित्र मंडली या क्रीड़ा समूह के संपर्क में आता है, उसके साथ वह खेलता है, उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। आरंभिक अवस्था में बच्चों की मित्र मंडली में यौन भेद नहीं होता, अर्थात बालक एवं बालिकाएं साथ साथ खेलते हैं। मित्र भी अनेक होते हैं, किसी बालक के कम मित्र होते हैं तो किसी बालक के अधिक। इस संबंध में स्टापियरी का कहना है कि सुडोल एवं हष्टपुष्ट बालकों के अधिक मित्र होते हैं, जबकि दुबले पतलों के कम। मित्र समूह या बच्चों का क्रीड़ा समूह प्राथमिक समूह है, इसी कारण इस समूह में अत्यधिक घनिष्ठता पाई जाती है। बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद क्रीड़ा समूह के संपर्क में ही आता है, इस प्रकार उसका संपर्क अनेक बच्चों के साथ होता है जो विभिन्न परिवेश में से आते हैं, अर्थात उनका मिजाज, व्यवहार का ढंग, अभिरुचि, रीति नीति आदि का अलग अलग होना होता है। खेलने के साथ साथ बच्चा एक दूसरे से प्रभावित होता है तथा एक दूसरे के साथ अनुकूलन भी करता है। इस प्रकार बच्चा क्रीड़ा समूह एवं मित्र मंडली के बीच विभिन्न व्यवहारों को सीखता है जो उसके समाजीकरण में सहायक सिद्ध होते हैं। मैकडेनलस ने समाजीकरण में जो उसके मित्र समूह के महत्व को स्वीकारा है तथा कहा है कि संभवतः यह शिक्षकों से अधिक शक्तिशाली है। भूमिकाओं की नकल एवं अभ्यास के लिए मित्र समूह अत्यंत आवश्यक है। अगर परिवार भूमिकाओं की विषय वस्तु को अधिक प्रभावित करता है तो मित्र समूह उनकी विधियों को अधिक प्रभावित करते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि परिवार किस हद तक समाजीकरण की भूमिका अदा करता है, इसका मूल्यांकन मित्र समूह में हो जाता है। आप मूल्यांकन का अवसर भी मित्र समूह से मिलता है, क्योंकि इनमें पारस्परिक विकास की तुलना का अवसर मिलता है। विभिन्न वर्गों में मित्र समूह विभिन्न ढंगों से प्रभावित करते हैं। धनी वर्गों में मित्र समूह उतने प्रभावी नहीं होते जितने कि मध्यम एवं निम्न वर्गों में, लेकिन इतना अवश्य है कि मित्र समूह या क्रीड़ा समूह समाजीकरण में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं तथा आत्म विकास में भी सहायक होते हैं। अतः मित्र समूह या क्रीड़ा समूह समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन कहा जा सकता है। समाजीकरण की प्रक्रिया का तीसरा साधन परोस है। इसका महत्व जन्म या बाल्यावस्था से लेकर व्यक्ति की वृद्धावस्था तक है। बचपन में व्यक्ति परोस के मित्रों के साथ खेलता कूदता है। परोस के संपर्क में आने से तथा उनके साथ बातचीत करने से आपसी संबंध तो मजबूत होते ही हैं, इसके साथ साथ व्यक्ति व्यवहार के नए ढंगों तथा आदर्शों को भी सीखता है। इसके प्रति वह चेतन या अचेतन रूप से सोचता है तथा उसमें नई आदतों का विकास होता है। इन नई आदतों के विकास के कारण उसका समाजीकरण होता है। विभिन्न धार्मिक पर्वों एवं त्योहारों के अवसर पर पड़ोस के लोग मिलजुल कर कोई न कोई कार्यक्रम करते हैं जिससे बच्चों की सामाजिक अवसर प्राप्त होता है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास में पड़ोस का बहुत बड़ा योगदान होता है। बाल्यावस्था के बाद वृद्धावस्था में पड़ोस व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीच की अवस्थाओं में व्यक्ति विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं जिससे उनका संबंध परों से थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वृद्धावस्था में जब व्यक्ति अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है तथा सक्रिय जीवन से संन्यास लेता है तो उस समय पड़ोस ही उसका साथ देता है। उसका अधिकांश समय पड़ोस के मित्रों के साथ ही बातचीत करने में बीतता है। इस प्रकार अपनी पूर्व भूमिकाओं को त्यागने से जो खालीपन एक वृद्ध व्यक्ति के जीवन में आता है उसकी भरपाई पड़ोस करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक पड़ोस की भूमिका अहम होती है। यह व्यक्ति के समाजीकरण में अत्यंत सहायक होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया का चौथा साधन नातेदारी समूह है। बच्चे के सगे संबंधियों का प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। विभिन्न अवसरों पर बच्चे अपने सगे संबंधियों एवं रिश्तेदारों से मिलते हैं तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बहुत से बच्चे अपने रिश्तेदारों के व्यवहारों को अपना लेते हैं। अगर रिश्तेदारों की विचारधारा गलत होती है तो बच्चे भी गलत व्यवहार अपना लेते हैं। अगर उनके विचार सही होते हैं तो बच्चे भी सही व्यवहार अपनाते हैं। इस प्रकार नातेदारी समूह का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बच्चे के समाजीकरण में नातेदार समूह की भी भूमिका होती है, इसलिए यह भी समाजीकरण का एक साधन है। समाजीकरण के प्राथमिक साधनों में पांचवा साधन विवाह है। इसके द्वारा भी व्यक्तियों का समाजीकरण होता है। विवाह उपरांत व्यक्ति के व्यवहारों में अंतर आ जाता है। पति पत्नी की भूमिका में एक नई भूमिका के रूप में व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होती है, जिससे उसे सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। पति पत्नी दो परिवारों से आए रहते हैं। उनके विचार, संचार, व्यवहार आदि में थोड़ा बहुत अंतर होना स्वाभाविक होता है। इस कारण दोनों एक दूसरे के साथ अनुकूलन करते हैं। यह अनुकूलन जितना अधिक होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया उतनी ही सफल होती है। विवाह के बाद नई परिस्थिति तथा भूमिका का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। उसका वह जितना सफलतापूर्वक सामना करता है, उतना ही समाजीकरण सफल होता है। अतः विवाह भी समाजीकरण के साधन या संस्था के रूप में महत्वपूर्ण है। समाजीकरण के प्राथमिक साधनों के अतिरिक्त द्वितीयक साधनों भी समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ज्यों ज्यों व्यक्ति बड़ा होता जाता है, वह समाजीकरण के द्वितीयक साधनों के संपर्क में आता जाता है तथा उसका जीवन इन्हीं संस्थाओं या साधनों द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित होने लगता है। समाजीकरण के द्वितीयक साधनों या संस्थाओं के रूप में जाति, वर्ग, राष्ट्रीयता, राष्ट्र, राजनीतिक दल, धार्मिक समूह, भाषा समूह तथा व्यवसायिक समूह आदि को शामिल किया जाता है। ये विभिन्न रूपों में समाजीकरण के साधन के रूप में कार्य करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख साधनों या संस्थाओं की चर्चा यहाँ की जा रही है, जो निम्नलिखित है। जाति एवं वर्ग समाजीकरण का द्वितीयक साधन है। व्यक्ति के समाजीकरण में इनका भी योगदान होता है। जाति जन्म के आधार पर समाज में सामाजिक स्तरण पैदा करता है। जाति खान पान, वेशभूषा, विवाह, सामाजिक पेशा तथा सामाजिक सहवास के संबंध में कुछ नियम एवं प्रतिबंध प्रस्तुत करती है, जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। इन नियमों का पालन नहीं करने पर जाति उसे सामाजिक दंड देती है। इस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित तथा निर्देशित होता है और इसका प्रभाव समाजीकरण की प्रक्रिया पर पड़ता है। इस संबंध में विल्सन का कहना है कि व्यक्ति के जन्म के प्रथम दिन से लेकर मृत्यु तक उसके समस्त कार्यों पर जाति प्रथा का नियंत्रण रहता है। जाति प्रथा विभिन्न रूपों में मानव को नियंत्रित तथा निर्देशित करता है। जाति के साथ साथ वर्ग भी व्यक्ति को एक सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, जिसके आधार पर वर्ग चेतना का निर्माण होता है और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का क्षेत्र निश्चित होता है। इस प्रकार जाति तथा वर्ग दोनों ही व्यक्ति का समाजीकरण करते हैं, अतः यह समाजीकरण का एक साधन है। समाजीकरण की प्रक्रिया में द्वितीय साधन के रूप में भाषा का भी महत्व है। भाषा समाजीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। आज अगर मनुष्य पशु से अलग है तो उसका मुख्य कारण उसकी भाषा है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों से बातचीत की जाती है, उन्हें समझाया जाता है, उनसे विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उनकी शंकाओं का निवारण किया जा सकता है तथा उन्हें दिशा निर्देशित किया जा सकता है। इन सबों के अभाव में समाजीकरण की प्रक्रिया संभव ही नहीं। भाषा के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया सरल एवं सुलभ हो जाती है। भाषा के द्वारा ही विभिन्न सामाजिक आदर्श एवं मूल्य, रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का आधार है। बच्चों के लिए मातृभाषा का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसी के द्वारा वह स्वाभाविक रूप से शिक्षा प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार भाषा के महत्व को पता चलता है। अगर भाषा ना होगी तो बच्चों को कैसे सिखाया जाएगा? अगर उसे नहीं सिखाया जाएगा तो समाजीकरण संभव ही नहीं होगा। अतः यह स्पष्ट होता है कि भाषा समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। समाजीकरण के द्वितीयक साधनों में शिक्षण संस्थाओं का योगदान बहुत अधिक है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में ही व्यक्तियों में मानसिक योग्यताओं की वृद्धि होती है। शिक्षण संस्थाएं ही व्यक्ति के जीवन में अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाती हैं। शिक्षण संस्थाओं में बच्चे के सामाजिक संबंध का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो जाता है। विद्यालय एवं महाविद्यालय में व्यक्ति विभिन्न छात्रों के संपर्क में आकर बहुत कुछ सीखता है। वहाँ छात्रों के अतिरिक्त शिक्षक तथा पुस्तक के माध्यम से भी वह बहुत कुछ सीखता है। बच्चों के माध्यम से देश विदेश की संस्कृति की जानकारी मिलती है। इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। कई ऐसे भी अध्यापक होते हैं जिनको व्यक्ति अपना आदर्श मानता है। उनके आदर्श को अपना कर व्यक्ति अपने जीवन को सुमन्नत बना सकता है। इस प्रकार यह पता चलता है कि शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होकर बहुत कुछ सीखता है। इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को व्यक्ति का समाजीकरण होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षण संस्थाओं में भी समाजीकरण के साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। समाजीकरण के द्वितीयक साधनों के रूप में धार्मिक संस्थाएं भी काम करती हैं। इसका प्रभाव भी व्यक्तियों पर बहुत अधिक पड़ता है। प्रत्येक धर्म से संबंधित कुछ आचार संहिताएं होती हैं, जिसके अनुरूप व्यक्ति अपना धार्मिक व्यवहार करता है। धर्म के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। समाज की समृद्धि और गरीबी बहुत हद तक धर्म पर निर्भर करती है। लोगों का झुकाव भौतिक व्यवहार की ओर होगा या नैतिक व्यवहार की ओर, इसे भी धर्म ही निर्धारित करता है। यह कहा जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था का आधार भारतवर्ष में धर्म है। इस प्रकार यह पता चलता है कि विभिन्न धार्मिक रूपों में मानव व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित धर्म ही करता है। इस प्रकार धर्म या धार्मिक संस्थाओं के द्वारा भी समाजीकरण होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण का एक साधन है। समाजीकरण के द्वितीय साधन के रूप में सामाजिक संस्थाएं भी काम करती हैं। समाज में सामाजिक स्तर का निर्धारण जाति और वर्ग द्वारा होता है। प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उस जाति या वर्ग के अनुरूप व्यवहार करे जिसका वह सदस्य है। भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे लोगों को जाति से बहिष्कृत करने की व्यवस्था भी है जो जाति विरोधी व्यवहार या कोई गंभीर अपराध करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहिष्कार करने से उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाएगा और वह फिर से सही रास्ते को अपना लेगा। सामाजिक संगठन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ बनाने रखने के लिए जातिगत या वर्गत व्यवहारों को करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपनी जाति या वर्ग से अनुकूल नहीं कर पाते वे एक असफल जीवन व्यतीत करते हैं। चूँकि व्यक्ति जाति या वर्ग के रूप में अपना आचरण करते हैं इसलिए उनका व्यवहार नियंत्रित रहता है तथा वे बहुत कुछ सीखते भी हैं। इस प्रकार समाजीकरण होता रहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएं भी समाजीकरण का एक साधन है। समाजीकरण के द्वितीय साधन के रूप में आर्थिक संस्थाएं भी काम करती हैं। आर्थिक समूहों से अनुकूलन करके ही एक व्यक्ति आर्थिक रूप से सफल हो सकता है। समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त करने के लिए भी आर्थिक संपन्नता का होना आवश्यक हो जाता है। इसलिए व्यक्तियों को आर्थिक समूहों से अनुकूलन करना पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को भी वहां कार्यरत लोगों से अनुकूलन करना पड़ता है। जिन समाजों में धर्म की प्रधानता अधिक रहती है वहां भी आज भौतिक साधनों की ओर लोगों का झुकाव अधिक हो गया है। इसलिए आर्थिक समूहों से अनुकूलन करना आज की आवश्यकता बन गई है। अतः आर्थिक संस्थाएं भी समाजीकरण का एक साधन कही जा सकती हैं। समाजीकरण के द्वितीय साधन के रूप में राजनीतिक संस्थाओं का भी अपना एक अलग महत्व है। राजनीतिक संस्थाएं राजनीति के प्रति जागरूकता का बोध कराती हैं। आज के प्रजातांत्रिक युग में राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेना स्वाभाविक सा हो गया है। राजनीतिक दलों द्वारा सरकार का स्वरूप तय होता है। इसी प्रकार सरकारी नीतियां ही सामाजिक व्यवस्था को संशोधित करती हैं। व्यक्ति के अधिकार एवं दायित्व उचित व्यवहार आदि राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से ही निर्धारित होते हैं। किसी समाज में भावी स्वरूप को उसी समाज की राजनीतिक संस्थाएं ही तय करती हैं। इसलिए व्यक्तियों को राजनीतिक संस्थाओं से अनुकूलन करना पड़ता है। एक सफल नागरिक होने के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस प्रकार राजनीतिक संस्थाएं भी समाजीकरण का एक साधन होती हैं। समाजीकरण के द्वितीय साधनों के रूप में मनोरंजनात्मक संस्थाएं भी काम करती हैं। व्यक्ति का जीवन विभिन्न तनावों एवं घुटन से भरा होता है। इस समय मनोरंजनात्मक संस्थाएं व्यक्ति के जीवन में सहायक सिद्ध होती हैं। विभिन्न मनोरंजन के साधनों द्वारा व्यक्ति उन व्यवहारों को अपनाता है जो उसे आदर्श लगता है। इन विभिन्न कृतियों के कारण व्यक्ति का व्यवहार एक ऐसे सामाजिक मोड़ पर आ जाता है जिससे वह पूरी तरह समाजीकृत हो सके। इस प्रकार मनोरंजनात्मक संस्थाएं भी समाजीकरण के एक साधन के रूप में काम करती हैं। समाजीकरण के द्वितीय साधन के रूप में सांस्कृतिक संस्थाएं भी काम करती हैं। बिना सांस्कृतिक के मानव का जीवन अपूर्ण माना जाता है। व्यक्ति की समस्त गतिविधियां संस्कृति का ही अंग होती हैं। भाषा, विश्वास, ज्ञान, साहित्य आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण तथा समाजीकरण में संस्कृति का बहुत अधिक महत्व होता है। सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा व्यक्ति का संस्कृति के विभिन्न तत्वों से परिचित होता है और इस प्रकार उसका समाजीकरण होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएं भी समाजीकरण के एक साधन के रूप में काम करती हैं। उपयुक्त विवेचनों से पता चलता है कि समाजीकरण के साधनों में समाजीकरण के प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक साधनों का बहुत बड़ा योगदान है। दोनों ही विभिन्न रूपों में व्यक्ति के समाजीकरण में योगदान होते हैं।